Om Anand, Om Anand. Godly student life is the best life. Ishwariya padhai, Sachidanand ne aakar ke padhai. Jis padhai ne कमाई कमाई है, आनंद ही आनंद है, और अपने भविष्य दर्शन का, भविष्य जीवन का दर्शन यहां पर ही होता है, अथवा पढ़ाई से प्राप्ति क्या है, उस पढ़ाई का स्वरूप अभी बनाते हैं बाबा. नशा रहता है, निश्चय रहता है, निशाना पक्का है, इस पढ़ाई से मुझे कौन सा पद प्राप्त होता है. इसलिए आनंद ही आनंद है कि ये पढ़ाई जीवन परिवर्तन तो इस समय करती है. पढ़ाई पढ़ा करके दिव्य बुद्धि बनाती है, अथवा बुद्धि का ताला खोल देती है. ये पढ़ाई न केवल देवलोक में ले जाती है, पर मनुष्य देवता बनाती है. अब उसमें ये देखना है कि मैं पढ़ाई पढ़ने में चुस्त हूं या सुस्त हूं, क्योंकि पढ़ाई पढ़ने में सुस्त बच्चे क्या करेंगे. बाहर की सुस्ती बेशक ना हो, पर मन का लेजीनेस होना, मन सुस्त है, मन माना भाव नहीं है. तो जब मन माना भाव नहीं है, मन परमात्मा में लगा हुआ नहीं है, तो चुस्त नहीं है. ईश्वरीय परमपिता परमात्मा से सुख लेने में चुस्त नहीं है, सुस्त है. और सुस्ती क्या करती है, संबंध. आज बाबा ने कहा सुस्त बच्चे बहुत एक्टिव होते हैं. एक तरफ कहा सुस्ती है, दूसरी तरफ कहा वो इतने एक्टिव होते हैं जो उनको दे तथा दे के संबंध में बुद्धि इतनी एक्टिव अथवा लगी हुई होती है और कुछ याद ही नहीं आता. पुरानी दुनिया में ही मस्त रहते हैं. और चुस्त बच्चे एक्टिव होकर के बाबा से प्राप्ति क्या होती है, उस नशे में रहते हैं. इसलिए बाबा ने कहा अच्छे मार्क्स लेना है, पढ़ाई अच्छी पढ़नी है, सुस्त नहीं बनना है, चुस्त बनना है. तो चुस्त बनेंगे सब कुछ दुरुस्त हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, बिगड़ी बन जाएगी, तकदीर जाग जाएगी। और तकदीर की तस्वीर, जिस तस्वीर को पूजते थे वो तस्वीर मन में बैठ जाएगी। मंदिर में नहीं जाना पड़ेगा, मन के अंदर वो मूरत बस जाएगी और अपनी तकदीर का दर्शन वो दर्पण में रोज नजर आता रहेगा। और दिल गाएगा, वाह मेरा भाग्य, वाह मेरा भाग्य, भगवान पढ़ा कि हमको क्या बना रहे। इसलिए सुस्ती और चुस्ती, कौन सी सुस्ती और कौन सी चुस्ती, उसका कॉन्ट्रास्ट है आज। चुस्त जो है वो हर चीज में सफल होगा, सुस्त व्यर्थ बहुत गवाएगा, समय भी व्यर्थ गवाएगा, संबंध में भी फंसा रहेगा, चिंतन में भी चिंता पर चिंतन में होगा। अभी सुस्त है पर एक्टिव बहुत है, इसलिए पढ़ाई का इफेक्ट नहीं होता, परिवर्तन नहीं आता है, परिवर्तन बहुत स्लो होता है। अच्छा, 25 जनवरी की मुरली सुनते हैं। ओम शांति। मीठे बच्चे, चुस्त स्टूडेंट बन, यानी एक्टिव अलर्ट, चुस्त स्टूडेंट बन, अच्छे मार्क से पास होने का पुरुषार्थ करो। सुस्त स्टूडेंट नहीं बनना है, सुस्ती कहां से आती है? सुस्त वो जिन्हें सारा दिन मित्र संबंधी याद आते हैं, प्रश्न है संगम युग पर सबसे तकदीरवान किसको कहेंगे, भाग्यशाली किसको कहेंगे? उत्तर है जिन्होंने अपना तन मन धन सब सफल किया है व कर रहे हैं, वो है तकदीरवान। कोई कोई तो बहुत मनहूस होते हैं, फिर समझा जाता तकदीर में नहीं है, समझते नहीं कि विनाश सामने खड़ा है, कुछ तो कर ले में। तकदीरवान समझते हैं कि बाप अभी सन्मुख आया है, हम अपना सब कुछ सफल कर ले में, उसमें समय, श्वास, संकल्प, संपत्ति, संबंध सब कुछ आ जाते हैं। हिम्मत रख अनेकों का भाग्य बनाने के निमित्त बन जावे, इसमें चुस्त बन जाए। गीत है, तकदीर जगा कर आई हूं कि नब में एक नई दुनिया बसा के आई हूं। नई दुनिया अपने संस्कारों में समा के आई हूं, हृदय में नई दुनिया बसा के लाई हूं। ओम शांति। ये तो तुम बच्चे तकदीर बना रहे हो, तकदीर जगा कर आई हो, बना भी रहे हो। गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल दिया और कहते हैं भगवानों वाच्य, मैं तुमको राजयोग सिखाता हूं। अब श्री कृष्ण तो भगवान है नहीं, ये तो श्री कृष्ण तो हमारा एम ऑब्जेक्ट है। फिर शिव भगवान वाच है कि मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूं। कृष्ण भगवान वाच नहीं, भगवानों वाच है, पर भगवान कौन? शिव। वो राजयोग सिखा के कहते हैं मैं खाली राजा नहीं बनाता हूं, राजाओं का राजा बनाता हूं। मतलब क्या है, द्वापर और कलयुग के राजाएं भी शिव लक्ष्मी नारायण को पूजते हैं। मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूं। अब राजा बनेंगे तो पहले क्या बनेंगे, राजा बनने से पहले क्या बनेंगे, प्रिंस ही तो राजा बनेगा ना, क्राउन प्रिंस ही राजा बनेगा। श्री कृष्ण तो एम ऑब्जेक्ट है, तो पहले जरूर प्रिंस बनेगा ना। बाकी कृष्ण भगवानों वाच नहीं है, कृष्ण तो तुम बच्चों की एम ऑब्जेक्ट है। ये पाठशाला है, भगवान पढ़ाते हैं, तुम सब प्रिंस प्रिंसेस बनते हो। तो पाठशाला कैसी है, बैगर टू प्रिंस बनने की, सुस्त से चुस्त बनने की, मनुष्य से तकदीरवान बनने की। अच्छा, बाप कहते हैं बहुत जन्मों के अंत के भी अंत में मैं तुमको ये ज्ञान सुनाता हूं। किस लिए सुनाता हूं, कौन सा मंत्र बताता हूं, फिर सो श्री कृष्ण बनने के लिए वही तकदीर सामने, हम सो हम वो श्री कृष्ण थे, हम वो प्रिंस थे, फिर हम वो बनने वाले हैं, फिर सो श्री कृष्ण बनने के लिए ये तुमको अब अंत में ज्ञान सुनाता हूं। इस पाठशाला का टीचर, इस पाठशाला का टीचर शिव बाबा है। श्री कृष्ण तो तुम बनते हो, तो श्री कृष्ण नहीं, शिव श्री कृष्ण तो एम ऑब्जेक्ट है। शिव बाबा ही एक तो राजयोग सिखा के राजाओं का राजा बनाते हैं, बैगर टू प्रिंस बनाते हैं, और क्या करते हैं, सिर्फ राज नहीं स्थापन करते, राज के साथ और क्या करते हैं, क्या करते हैं, धर्म स्थापन करते हैं, दैवी धर्म की स्थापना करते हैं। तुम बच्चे कहते हो हम आए हैं तकदीर बनाने, आत्मा जानती है अब हम परमपिता परमात्मा से तकदीर बनाने आए हैं। कैसी तकदीर, प्रिंस प्रिंसेस बनने की तकदीर। राजयोग है ना, राजयोग की पढ़ाई है, पढ़ाने वाला शिव बाबा बीज रूप, तो उसकी यादगार क्या है, भक्ति में या ज्ञान में भी प्रैक्टिकल में। तो बाबा ने प्रदर्शनी के चित्र देखे थे, तो प्रदर्शनी के चित्र में बीज में से दो पत्ते जैसे निकलते हैं, तो ऐसे परमात्मा बीज से, जैसे बीज फूटता है तो पहले दो पत्ते कंबाइंड निकलते हैं, कोमल पत्ते, तो परमात्मा बीज रूप से ये स्वर्ग, पहले पहले स्वर्ग के दो पत्ते राधे कृष्ण निकलते हैं। ये चित्र जो बनाया ना, ये ठीक है समझाने के लिए, समझाने के लिए अच्छा है। ज्ञान, गीता के ज्ञान से ही तकदीर बनती है। तकदीर जगी थी, फूट गई तकदीर। बहुत जन्म के अंत में तुम जो प्रिंस थे वो तमो प्रधान बन के बैगर बन गए। तो हम सो जो प्रिंस प्रिंसेस थे अब फिर प्रिंस बनना है। पहले तो जरूर राधे कृष्ण ही बनेंगे ना, प्रिंस प्रिंसेस ही बनेंगे ना, फिर उनकी राजधानी चलती है। अब राजधानी में सिर्फ एक तो नहीं होगा ना, राजधानी है राजा रानी है तो सारी प्रजा दास दासियां सब होंगी ना। सिर्फ एक तो नहीं होगा, तो यही पे हमारा लक्ष्य है, नर से नारायण नारी से लक्ष्मी बनने का, अथवा क्या कहे पहले प्रिंस और प्रिंसेस बनने का। तो स्वयंवर के बाद राधे कृष्ण ही सो फिर श्री लक्ष्मी नारायण बनते हैं। बचपन में नाम राधे कृष्ण है, स्वयंवर होता है नाम बदल जाता है, उसकी यादगार है। आजकल भी शादी होती है माँ बाप के दिया हुआ नाम अलग होता है, ससुराल के नाम जाने से नाम बदल जाता है, नाम ना भी बदले सरनेम बदल जाता, ये रस्म चली आई। तो सतयुग में दोनों का नाम बदली होता है, राधे का नाम भी बदली हुआ तो कृष्ण का नाम भी बदली हुआ, त्रेता में फिर एक का नाम बदली हुआ, सीता जानकी जानकी रही सती त्रेता सीता ही रही, श्री कृष्ण का नाम श्री राम का नाम। तो फिर कलयुग में वो रस्म चली आती है एक का। तो स्वयंवर के बाद राधे कृष्ण तो फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। तो नर से प्रिंस व नारायण बनना एक ही बात है। तो तुम बच्चे जानते हो ये लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक थे, जरूर संगम युग पर स्थापना हुई होगी, इसलिए तुम संगम युग को पुरुषोत्तम युग कहा जाता है। और इस संगम युग पर पढ़ाई पढ़ा करके पद प्राप्त कराते हैं और धर्म की स्थापना होती है। आदि सनातन देवी देवता धर्म, बाकी सब धर्म विनाश हो जाएंगे, यानी फिर उनकी स्थापना वो परम धाम आत्माएं चली जाएंगी। तो सतयुग में बराबर एक ही धर्म था। तो ये है हिस्ट्री और जियोग्राफी, जो फिर से रिपीट होनी है, फिर से स्वर्ग की स्थापना होगी, जिसमें श्री लक्ष्मी नारायण का राज्य होग था। और ये भारत विश्व परिस्थान था। अब वो परिस्थान का नाम बदल करके क्या हो गया, कब्रिस्तान बन गया, फरिश्तों की दुनिया से बदल करके ये दुनिया मुर्दों की हो गई। सब काम चित्ता पर बैठ के भस्म हो जाएंगे। सतयुग में तुम महलादि बनाएंगे, ऐसे नहीं है कि कोई महल सोने की द्वारका व लंका नीचे से निकल आएगी, फिर से क्या बनेगा। द्वारका हो सकती है, लंका तो नहीं होगी ना, यानी स्वर्ग सुख श्री कृष्ण की नगरी होगी, रावण की नगरी तो नहीं होगी ना। उसको गोल्डन एज कहा जाता है। और राम राज रावण राज के कंट्रास्ट में राम राज कहा जाता है, वो फिर से हिस्ट्री रिपीट होगी। जो सच्चा सोना था वो तो सब लूट गया। तुम समझाते हो भारत कितना धनवान था, अभी तो कंगाल है, कितना मालामाल था, धनवान था, अब तो कंगाल। तो कंगाल अक्षर लिखना कोई बुरी बात नहीं है, तुम समझा सकते हो, यानी बैंक करप्ट हो जाते ना, कहता था तो मालामाल कंगाल हो गए, तो वही जो मालामाल सा भारत कंगाल बन गया। जैसे बाबा ने कहा गार्डन था जंगल बन गया, फूलों का बगीचा था फॉरेस्ट बन गया, सुखधाम था दुखधाम बन गया। ये हिस्ट्री है, तुम समझा सकते हो। सतयुग में एक ही धर्म था, वहां कोई और धर्म हो नहीं सकता। कई कहते हैं ये कैसे हो सकता है, इस सारे विश्व में सिर्फ एक ही धर्म होगा क्या, सिर्फ देवताएं होंगे, अनेक मत है, एक के मत न मिले दूसरे से। कोई कहते हैं सब मोक्ष को पा लेंगे, कोई कहते हैं प्रलय हो जाएगी, मत तो अनेक है। कितना वंडर है, क्या वंडर है, इस वंडर है ड्रामा को समझने से। ड्रामा समझ में आया तो वंडरफुल लगता है, वंडर है। कितने एक्टर्स हैं, और वंडरफुल बात क्या है कि है तो कब्रिस्तान पर स्थान बन रहा है, नरक है वो स्वर्ग बन रहा है। अब नरक में बैठे संगम पर स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। अगर ये याद रहे ये संगम, हम संगम युग पर हैं और हम ही स्वर्गवासी बन रहे हैं, कब्रिस्तानी से परिस्तानी बन रहे हैं। तो प्रैक्टिकल अनुभव क्या होगा, हम ही स्वर्गवासी बन रहे हैं। अगर ये याद रहा, अपना फोटो देखो हम ये बन रहे हैं, तो चेहरा कैसे होगा, हर्षित मुख हो गए, हम बन रहे हैं ये। तो तुम बच्चों को बहुत खुशी रहनी चाहिए, तुम्हारा एम ऑब्जेक्ट तो ऊंचा है ना। तो क्या याद रहे, हम मनुष्य से देवता स्वर्गवासी बनते हैं, यही हमारी पढ़ाई का लक्ष्य है। ये भी तुम ब्राह्मणी जानते हो, क्या जानते हो कि स्वर्ग की स्थापना हो रही है, ये सदैव याद रहना चाहिए। स्वर्ग की स्थापना हो रही है और हम उस स्थापना के मददगार मेंबर से अधिकारी हैं। परंतु माया घड़ी घड़ी भुला देती है, और उस भूल से क्या होता है, वो जो मनुष्य देवता बनने के लिए दैवी गुण धारण करने हैं, परिवर्तन होना है, सुधार होना चाहिए अपने जीवन में, वो सुधार नहीं होता, होशियार नहीं बनते पढ़ाई में, तकदीर में नहीं है तो सुधरते नहीं है। कौन सी एक आदत पड़ी हुई आज अकलप से जो निकलती नहीं है। दूसरी बात, एक पुरानी आदत विघ्न डालती है। कौन सी आदत, सब मनुष्यात्माओं में कोई भी एक ऐसा नहीं है जिसमें वो आदत न हो। कौन सी आदत, झूठ बोलने की आदत। सबसे पहला झूठ कौन सा है? सबसे पहला सच क्या है? मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। पहला झूठ है मैं फलाना हूं, मैं लड़का हूं, मैं लड़की हूं, मैं पोजीशन वाला हूं। तो मैं कौन हूं ये भूल गया पहला झूठ, तो सारे हर एक झूठे बन गए। वो झूठ बोलने की आदत हो, झूठ बोलने की आदत आधा कल्प से पड़ी हुई है, वो निकलती नहीं है। और फिर मेरा मैं फलाना हूं, ये मेरा संबंधी है, ये मेरी पोजीशन है, ये झूठ को खजाना समझ के रखते हैं। झूठ को मलकियत समझ के रखते हैं, छोड़ते नहीं है। तो समझा जाता है इसकी तकदीर ऐसी है, बाप को याद नहीं करते। और याद भी तब रहे पूरा, याद भी तब रहे जब पूरा ममत्व निकल जाए। सारी दुनिया से वैराग्य आ जाए, मित्र संबंधी आदि को देखते भी जैसे देखते ही नहीं है। जानते हैं कि सब नरकवासी हैं, कब्रिस्तानी हैं, ये सब खत्म हो जाने वाले हैं, ये जानते हैं। और खुद के लिए याद क्या रहना चाहिए? वैराग आएगा, ये कब्रिस्तानी दुनिया है, सब कब्र दाखिल है। ये दुनिया में इनसे क्या कैसी यारी, क्या संबंध? कब्र में चले जाने वाले के साथ संबंध रहता है क्या? कब्रिस्तानी है, खत्म हो जाने वाले हैं, फिर याद क्या रहना चाहिए? अपने लिए क्या याद रहना चाहिए? अब घर वापस जाना है। एक तो बेहद का वैराग चाहिए, अब घर वापस जाना है। और दूसरी बात, सुख धाम शांति धाम को याद करना है। वापस जाना है तो कहाँ जाना है? शांति धाम सुख धाम को याद करते हैं। कल हम स्वर्गवासी थे, राज करते थे, वो गंवा दिया, अब फिर हम राज लेते हैं। वो खुशी रहनी चाहिए। बच्चे समझते हैं भक्ति मार्ग में कितना माथा टेकना, पैसा बर्बाद करना होता है, चिल्लाते भी रहते हैं, मिलता कुछ भी नहीं है। आत्मा पुकारती है, बाबा आओ सुखधाम में ले चलो। सभी जब अंत में बहुत दुख होता है तब याद करते हैं। तो अब तुम क्या जानते हो, देखते क्या हो? जानते हो ये पुरानी दुनिया खत्म होनी है, देख भी रहे हो ये पुरानी दुनिया भी खत्म होनी है। और जानते क्या हो जो दुनिया नहीं जानती? को क्या जानते हो? बाप को तो जानते हो, और क्या जानते हो? सृष्टि चक्र में कौन सी बात को जानते हो? जब चुस्त रहे, सुस्त ना रहे, कि अभी ये अंतिम जन्म है, इसमें हमको सारी नॉलेज मिलती है, चुस्त बन जाएंगे। यह हमारा आखिरी जन्म है, और इसलिए नॉलेज पूरी धारण करनी है। वैराग्य आला के सब कब्रिस्तान है, होने वाला है और हमारा ये आखिरी जन्म है, इसलिए हमको पूरा परिवर्तन होना है, पुरुषार्थ करना है, नॉलेज पूरी धारण करनी है। अर्थ को एक आदि अचानक होता है ना, हिंदुस्तान पाकिस्तान के पार्टीशन में कितने मरे, बहुत मरे होंगे, तुम बच्चों को शुरू से लेकर अंत तक सबका मालूम पड़ा है। बाकी जो भी रहा हुआ है कोई सीक्रेट अभी बाबा को और समझाने हैं वो भी मालूम पड़ता जाएगा। अब जो वापर में एक्सक्यूज मी, सिर्फ एक सोमनाथ का मंदिर सोने का नहीं होगा, और भी बहुतों के महल मंदिर आदि होंगे सोने के। सतयुग त्रेता में महल मंदिर महल होंगे। फिर क्या होता है उन महलों का? वो मंदिर तो लूट लिया द्वापर में, सोमनाथ का मंदिर हीरे जड़े, वो महलों का क्या हुआ जो हीरे से जड़े हुए थे? वो भी सेमी नेचुरल क्लाइमेटीज आती हैं, अर्थक्वेक आदि होता है, बाढ़ आती है, प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, वो सेमी विनाश जिसको कहेंगे। फिर क्या होता है, वो कहां गुम हो जाते हैं? क्या अर्थक्वेक में ऐसे अंदर चले जाते हैं जो निकलते ही नहीं है? अंदर सड़ जाते हैं भाई, समुद्र के नीचे चले गए। क्या होता है आगे चल के तुमको सब पता पड़ जाएगा। कहते हैं कि सोनी द्वारका सागर में चली गई। अभी तुम कहेंगे क्या नीचे चली गई, धरती के नीचे चली गई, कहां गई? वो स्वर्ग जो था वही धीरे धीरे बस से स्टेज नीचे हो गई, संपत्ति संस्कार सब बदल गए। अभी तुम कहेंगे ड्रामा में नीचे चली गई, जैसे कोई चीज चक्कर घूमता, चक्कर को समझेंगे तो जो नीचे से ऊपर आई, ताकि तुमको पता पड़ जाएगा। कहते सोने की द्वारका नीचे चली गई, अभी तुम कहेंगे वो नीचे चली गई, फिर चक्कर फेंकेगा ऊपर आएगी। हम ही स्वर्गवासी नीचे चले गए, चलती फिरती कब्र बन गए। कब्रिस्तान का मतलब क्या है? बॉडी उसमें है पर सोल नहीं है, तो हम चलती फिरती बॉडी तो है, आत्मा कॉन्शियस है ही नहीं। हाईएस्ट थे लोएस्ट बन गए। बाबा उसकी मिसाल देते हैं, आएगा कोई ना कोई मुरली में, ये पुराने जमाने में कुएं होते थे, कुएं में वो जो पानी निकल लाते थे मटके लगे हुए होते थे, बाल्टियां लगी हुई होती थी, लोहे की कंगनी होती थी, मतलब लोहे का जंजीर से वो बंधी हुई होती थी बाल्टियां, तो वो पानी नीचे से ऊपर आया, आधा समय तक वो बाल्टियां भरी रहती थी। खेतों में पानी डालते हैं ना, फिर आता है टाइम आता है जो पानी धीरे 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 वो पानी खेतों में जाता रहता है, वो बाल्टी खाली हो जाती है, फिर नीचे जाती है, फिर ऊपर उठती है, भरी हुई आ जाती है। तो बाबा सृष्टि चक्र का मिसाल देते हैं, मुरली में ही बाबा ने बताया तो बराबर प्रैक्टिकल में, हम ही भरपूर होते हैं, हम ही खाली हो जाते हैं, फिर अभी भरपूर बनने का समय है। माला माल थे कंगाल बन गए, सिरताज थे मोहताज बन गए, स्वर्गवासी थे नरकवासी बन गए, ऊंचे थे नीच बन गए। फिर से चक्कर फिरेगा, ऊपर आ जाएंगे, सो भी फिर से कोई महल वो निकल नहीं आएंगे, वो तुमको बनाने होंगे। ये चक्कर बुद्धि में सिमरन करते बड़ी खुशी रहनी चाहिए, वो चित्र तो पॉकेट में रख देना चाहिए, हम ये बनने वाले हैं। ये बैज बहुत सर्विस लायक है, प्रश्न इतनी सर्विस कोई करते नहीं है। बच्चे ट्रेन में बहुत सर्विस कर सकते हो, परंतु कोई भी कभी समाचार नहीं लिखते कि ट्रेन में क्या सर्विस की। थर्ड क्लास में भी सर्विस हो सकती है, जिन्होंने कल्प पहले समझा है, जो मनुष्य देवता बने हैं वही समझेंगे। मनुष्य देवता गाया जाता है, ऐसे नहीं कहेंगे कृष्ण कि मनुष्य क्रिश्चियन व मनुष्य सिख, नहीं, मनुष्य देवता अर्थात आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हुई, बाकी सब अपने अपने धर्म में चले गए। परमधाम में आत्माएं अपने सेक्शन में चली गई। ये झाड़ में भी दिखाया गया है कि फलाने फलाने धर्म फिर कब स्थापन होंगे। अच्छा, देवताओं का क्या हुआ? देवताएं हिंदू बन गए, वो भी धर्म बदली हो गया, अपने आप को हिंदू कहते हैं, और हिंदू बन के फिर कई और धर्म में कन्वर्ट हो गए, वे भी बहुत निकलेंगे। जितने जितने कन्वर्ट हो गए हैं, जो अपने श्रेष्ठ धर्म कर्म को छोड़ दूसरे धर्मों में जाकर पड़े हैं, अब प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है ना, 130 देशों में अपने सेंटर हैं, उसमें दूसरे धर्म वाले हैं ना, बाबा के बच्चे निकल आए हैं ना, कोई क्रिश्चियन धर्म, कोई मुस्लिम धर्म, कोई बौद्ध धर्म, अनेक कोई धर्म में चले गए, वो वापस आ गए। पीछे थोड़ा समझेंगे, प्रजा में आ जाएंगे, देवी देवता धर्म में सब थोड़े ही आएंगे, बाकी धर्म वाले अपने अपने सेक्शन में चले जाएंगे। तो तुम्हारी बुद्धि में ये सब बातें हैं, दुनिया में तो क्या क्या करते रहते हैं, अनाज के लिए कितना प्रबंध रखते हैं, बड़ी बड़ी मशीनें लगाते हैं, होता कुछ नहीं है। सृष्टि को तमो प्रधान बनना ही है, सीढ़ी नीचे उतरनी है, ड्रामा में जो मूड है वो होता रहता है, पर अब फिर नई दुनिया स्थापन होनी है। सीक्रेट बाबा ने कहा, धीरे धीरे खुला खोलता जाता हूं, इतने सीक्रेट्स तो आज की मुरली में ही है। साइंस जो अभी सीख रहे हैं, ये संस्कार ले जाएंगे, थोड़े वर्ष में बहुत होशियार हो जाएंगे, वो एडवांस पार्टी वाले, जिससे फिर वहां बहुत अच्छी अच्छी चीजें बनेंगी। ये साइंस वहां सुख देने वाली होगी, यहां थोड़ा सुख है पर दुख बहुत है। इस साइंस को निकले कितने वर्ष हुए होंगे। पहले तो बिजली गैस आदि कुछ नहीं था, अभी तो देखो क्या हो गया है। वहां तो फिर सीखे सिखाए चलेंगे, यानी अभी जो एडवांस हुए उसमें बीके भी तो साइंटिस्ट है ना, जल्दी जल्दी काम होता जाएगा। यहां भी देखो मकान कैसे बनते हैं, सब कुछ रेडी रहता है, कितनी मंजिल बनाते हैं। वहां ऐसे नहीं होगा, ये 25 मंजिल 50 मंजिल की बिल्डिंग नहीं होगी, महल होंगे तो डबल स्टोरी बनाने की जरूरत भी नहीं है, जमीन बहुत है, हर को अपनी अपनी खेती होती है, टैक्स आदि कुछ नहीं देना पड़ता, गवर्नमेंट को कुछ टैक्स नहीं देना पड़ेगा। वहां तो अथाह धन होता है, जमीन भी ढेर होती है, नदियां तो सब होंगी, नाले नहीं होंगे, कैनाल्स नहीं बनाने की जरूरत पड़ेगी, कैनाल बाकी नाले नहीं होंगे जो बाद में खोदे जाते हैं। तो बच्चों को अभी नेक्स्ट पॉइंट, पहली तो पढ़ाई की खुशी, कमाई की खुशी, दूसरी निश्चय और नशा कौन सा है, बच्चों को अंदर में कितनी खुशी होनी चाहिए, क्योंकि ये पढ़ाई चढ़ाई है, ये पढ़ाई कमाई है और ऊंचे चढ़ रहे हैं। अब ऊंचे चढ़ने के लिए, पहाड़ी पर चढ़ने के लिए डबल इंजन मिले, डबल इंजन कौन, बाप और दादा, डबल इंजन मिल रहे हैं। पहाड़ी पर ट्रेन को डबल इंजन मिलती है, और तुम बच्चे भी मददगार हो, उंगली देते हो, तुम कितने हो, थोड़े हो, पर तुम्हारी महिमा गाई हुई है। तुम कौन हो, कौन सी महिमा है तुम्हारी, याद है, नया टाइटल याद कराती है, तुम जानते हो हम खुदाई खिजमतगार हैं, हम गॉडली सर्वेंट बाबा के साथी हैं, सेवाधारी हैं, श्रीमत पर खिजमत कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, बाबा भी सब खिजमत करने आया है, सेवा करने आया है। अनेक धर्म की, एक धर्म की स्थापना, इन अनेक धर्मों का विनाश थोड़ा आगे चल करके देखेंगे, बहुत हंगामे होंगे, अभी भी डर रहे हैं कि कहां लड़कर बम्स न बना देवे, चिंगारी तो बहुत लगती है, बीच बीच में आग लगती है थोड़ी, घड़ी घड़ी आपस में लड़ते रहते हैं। बच्चे जानते हैं पुरानी दुनिया खत्म होनी है, फिर हम घर चले जाएंगे, अभी 84 का चक्कर पूरा हुआ, सब इकट्ठे चले जाएंगे, तुम्हारे में भी थोड़े हैं जिनको घड़ी घड़ी याद रहता है, पढ़ाई तो सब पढ़ रहे हैं, पर ड्रामा अनुसार चुस्त और सुस्त दोनों ही प्रकार के स्टूडेंट्स हैं। चुस्त स्टूडेंट अच्छी रीति से अच्छे मार्क से पास होते हैं, सुस्त जो होंगे वो क्या करेंगे, एक तो संबंधियों में बुद्धि योग लटका हुआ होगा, और दूसरा क्या करेंगे, और क्या होगा, फिर चुस्त किस में होंगे, सुस्त चुस्त किस में बन जाते हैं, आपस में लड़ते झगड़ते रहते, कॉन्फ्लिक्ट, संस्कारों का कॉन्फ्लिक्ट उसमें चुस्त है, रिश्तेदारों को याद किया बुद्धि सुस्त हो जाती, देवान में आए सुस्त हो गए, सुस्त होगा उनको तो सारा दिन लड़ना झगड़ना ही होता रहेगा, बाप को याद नहीं करते, तो वो लड़ाई झगड़ा बुद्धि को सुस्त कर देता है, चुस्त नहीं बनने देता। सारा दिन मित्र संबंधी याद आते रहते हैं, यहां तो सब कुछ भूल जाना है, भूल जाना होता है। हम ये शरीर नहीं, हम आत्मा है, ये शरीर दुम है, पूंछ है, लटकी हुई है, ये दुम लट शरीर रूपी दुम लटका हुआ है, ये शरीर बंधन में बांधा हुआ है। हम कर्मातीत अवस्था को पालेंगे फिर एकदम छूट जाएगा, यही फिक्र है समझा। हमें और कोई फिक्र चिंता नहीं है, हमको कर्मातीत बनना है। दादी जी का मंत्र था, दीदी जी का मंत्र था, अब घर जाना है, अब घर जाना है। दादी जी का मंत्र था, कर्मातीत बनना है, कर्मातीत बनना है। मम्मा का मंत्र था, अभी अंतिम घड़ी है, जी हुकम जी हजूर तो प्रैक्टिकल सेवा में ये लास्ट घड़ी है। तो कर्मातीत अवस्था हो जाए, ये शरीर खत्म हो जाए, समझा, कौन सी चिंता रहे, हम कर्मातीत बन जावे, ये भान खत्म हो जावे, हम श्याम से सुंदर बन जाए। तो मेहनत करनी है ना, होमवर्क है। प्रदर्शनी में भी देखो कितनी मेहनत करते हैं। तो आज बाबा ने अपने महेंद्र भाई को, महेंद्र भाई कुमार था, हापुड़ से निकला था, बहुत होशियार, ये दो वास्तव में भाई कुमार महेंद्र और उनके साथ बलदेव नाम था, दोनों ही बहुत अच्छे थे, पर उसमें महेंद्र एक्टिव बहुत था। तो पहला जयपुर का म्यूजियम बनवाया, बाबा ने उसको निमित्त रखा म्यूजियम बनाने के लिए, हमको भी भेजा जयपुर में, मैंने फौरन टेलीग्राम भेजा, आज की डेट में ही जयपुर चली जाओ। दिल्ली में थे हम उस समय, तो बाबा को शौक था क्योंकि बाबा ने बनवाया था, और वो समाचार रोज महेंद्र भाई हम देते थे। तो महेंद्र ने कितनी मेहनत दिखाई है, अकेला कितनी मेहनत से प्रदर्शनी आदि तैयार करते हैं, मेहनत का फल भी तो मिलेगा ना। एक ने कितनी कमाल की है, कितनों का कल्याण किया है, और फिर ये जो ये भी नहीं कि चलो अच्छा बाबा से मदद लेकर के बनाए, नहीं, उसकी बुआ बहुत मददगार थी, मतलब संबंधी अच्छे हेल्पफुल थे, तो तन भी बुद्धि भी मन भी धन भी सब बाबा ने कहा अकेले नहीं कितना काम कर लिया। तो मित्र संबंधी आदि की मदद से कितनों का कल्याण किया और कितना काम किया, कमाल है। अब फिर तो क्या है, भोपाल स्थान, ग्वालियर, आगरा, पहले आगरा में गया, आगरा सेंटर खोला, फिर ग्वालियर और भोपाल खोला, उसके बाद और खोलते गए, मतलब बहुत एक्टिव था कुमार। तो कमाल है, मित्र संबंधियों को समझाते हैं ये पैसे आदि सब इस कार्य में लगाओ, रख करके क्या करोगे। फिर आगरा का सेंटर खोला था, भोपाल का सेंटर खोला, सेंट ग्वालियर का खोला, सेंटर भी खोला हिम्मत से, कितनों का भाग्य बनाया है, ऐसे 5-7 निकले तो कितनी सर्विस हो जावे। कोई कोई तो बहुत मनहूस होते हैं, होता है सब कुछ पर ना संबंधियों से सेवा कराते हैं ना खुद करते, कंजूस, तकदीरवान नहीं, मनहूस। फिर समझा जाता है तकदीर में नहीं है, समझते नहीं है कि विनाश सामने खड़ा है, कुछ तो कर ले। अभी मनुष्य दान करेंगे, ईश्वर अर्थ करेंगे, कुछ मिलेगा नहीं। द्वापर में तो फिर भी भक्ति खेती करते थे, दूसरे जन्म में मिलता था, अब तो घर वापस जाना है तो मिलने की बात ही नहीं, कुछ मिलेगा नहीं। संगम पर जिन्होंने अपना तन मन धन सब सफल कर लिया है, वह कर रहे हैं, वो तकदीरवान है। तुम्हारी तो तकदीर में नहीं है, तो समझते नहीं है। तुम जानते हो वो भी ब्राह्मण है, हम भी ब्राह्मण है, हम प्रजापिता ब्रह्मा कुमारियां हैं, इतने ढेर ब्राह्मण हम हैं, मुखवंशावली वो है कुखवंशावली। संगम शिव जयंती संगम पर होती है। अब स्वर्ग बनाने के लिए बाप मंत्र देते हैं, मन मना भव मुझे याद करो तो तुम पवित्र बन, पवित्र दुनिया के मालिक बन जाएंगे। ऐसे युक्ति से पर्चे छपाने चाहिए। दुनिया में मरते तो बहुत ही है ना, तो जहां कोई शरीर छोड़ते हैं वहां पर्चे बांटने चाहिए। बाप जब आते हैं तब पुरानी दुनिया का विनाश होता है, उसके बाद स्वर्ग के द्वार खुलते हैं। अगर कोई सुखधाम चलना चाहे तो ये मंत्र है मन मना भव। वो स्वर्ग गया, उसके लिए बोला तुमको अगर स्वर्ग में जाना है तो ऐसे रसीले छपे हुए पत्र हो, पर्चे हो, रसीला छपा हुआ पर्चा सबके पास हो, शमशान में बांट सकते हो। बच्चों को सर्विस का शौक चाहिए, सर्विस की युक्तियां तो बाबा बहुत बतलाते हैं, तो ये अच्छी रीति लिख देना चाहिए। एम ऑब्जेक्ट तो लिखा हुआ है पर समझाने की भी बड़ी अच्छी युक्ति चाहिए। अच्छा अच्छा मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति, मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करने के लिए क्या करना है? इस शरीर रूपी दुम को भूल जाना है, ये पूछ बॉडी की, इसको भूल जाना है। एक बाप के सिवाय कोई मित्र संबंधी याद ना आए, ये मेहनत करनी है। सेकंड पॉइंट है श्रीमत पर खुदाई खिजमतगार बनना है। तन मन धन सफल कर अपनी ऊंची तकदीर बनानी है। वरदान है आज का, काम भोग रूपी परिस्थिति के आकर्षण को भी, काम भोग रूपी परिस्थिति के आकर्षण को भी समाप्त करने वाले संपूर्ण नष्टो मोहा भव। अभी तक प्रकृति द्वारा बनी हुई परिस्थितियां अवस्था को कुछ न कुछ अपनी तरफ आकर्षित करती हैं। शरीर की बीमारी, अपने आप को आकर्षित करती है। सबसे ज्यादा देह के हिसाब किताब रहे ये कर्म भोग के रूप में आने वाली परिस्थिति अपनी तरफ आकर्षित करती है। जब ये भी आकर्षण समाप्त हो जाए तब कहेंगे संपूर्ण नष्टो मोह। कोई भी देह की व देह की दुनिया की परिस्थिति हमारी स्थिति को हिला ना सके। शरीर की बीमारी है पर अवस्था ना बिगड़े, स्थिति को हिला ना सके, ये संपूर्ण स्टेज है। जब ऐसी स्टेज तक पहुंच जाएंगे तब सेकंड में अपने मास्टर सर्वशक्तिवान स्वरूप में सहज स्थित हो सकेंगे। स्लोगन है पवित्रता का व्रत सबसे श्रेष्ठ सत्यनारायण का व्रत है। समझा कौन सा व्रत रखना है? सत्यनारायण का व्रत रखना है। पवित्रता का व्रत सबसे श्रेष्ठ सत्यनारायण का व्रत है। इसमें ही अतीन्द्रिय सुख समाया हुआ है। इसलिए ओम शांति के साथ ओम आनंद। अतीन्द्रिय सुख समाया हुआ। अच्छा स्लोगन ये तो पढ़ लिया, पवित्रता का व्रत सबसे श्रेष्ठ सत्यनारायण का व्रत है, इसमें यह अतीन्द्रिय सुख समाया हुआ। आज का व्यक्त सिग्नल है अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करो। मनसा सेवा बेहद की सेवा है। जितना आप मनसा से वाणी से स्वयं सैंपल बनेंगे तो सैंपल को देख करके स्वतः ही आकर्षण होंगे, आकर्षित होंगे। कोई भी स्थूल कार्य करते मनसा द्वारा वाइब्रेशन फैलाने की सेवा करो। जैसे कोई बिजनेसमैन है तो स्वप्न में भी बिजनेस ही देखता है, ऐसे आपका काम है विश्व कल्याण करना, यही आपका ऑक्यूपेशन है। इस ऑक्यूपेशन को स्मृति में रख सदा सेवा में बिजी रहो। ओम शांति, ओम शांति। अच्छा ये विदेशियों का प्रोग्राम योग के बाद सुनाएंगे।